السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آئیے تشریف.
شکریہ زحمت نہیں دیتی. آپ کا برتن لائی تھی.
امی امی بزرگ میں صاحبہ.
نہیں 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 میں مزاحم نہیں ہوں گی. پلیز یہ لے کر آئی تھی پیالہ.
معاف کیجیے گا.
کوئی بات نہیں.
سلام سحر بیٹی, تم ٹھیک تو ہو نا؟ اندر کیوں نہیں آ رہی؟
نہیں بہت
تکلف کر رہی ہوں.
آپ کو زحمت نہیں دوں گی. یہ آپ کا برتن لے کر آئی تھی.
بہت شکریہ. نوشے جان کیا نا آپ نے. آ جاؤ.
شکریہ.
آ جاتی تو اچھا تھا, بیٹھ کے تھوڑی گپ لگاتے.
انشاءاللہ کسی اور وقت آؤں گی.
اگر مصطفیٰ سے شرما رہی ہو تو وہ نیچے اپنے کمرے میں چلا جائے گا. اگر فارغ ہو تو اندر آ جاؤ, گھر میں جا کے اکیلی کیا کروں گی.
بہت شکریہ. کسی اور وقت آپ کو زحمت دوں گی.
کوئی زحمت نہیں بیٹا, آ جاؤ.
اور ہاں آپ کی آج بہت مزے دار تھی.
نوشے جان
چلتی ہوں.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
اندر چل کے دیکھتی کیا کر رہی ہو؟ اور خدا میری جان, میری پیاری بیٹی, میں قربان اپنی جان کے. میری پیاری بیٹی چلو اندر دیکھ کے چلتے ہیں کیا ہو رہا. سلام سب لوگ. سلام بابا, میں آ گئی.
سلام علیکم ابو جان. آئیے.
سلام.
سلام علیکم بیٹی, تم کیسی ہو؟
بیٹی سلام میری جان, کیسی ہو؟
سلام ابو, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. آئیے.
جان میچو میں چھوٹی سی بیٹیا,
یہ لو میں.
بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. معاف کیجیے گا پھوپھی.
شکریہ.
خوب تھکا دیا آپ کو اس نے.
نہیں بیٹا, ایسا کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اتنی پیاری بچی سے کوئی تھکتا ہے؟
آج نہیں گئی آپ
اسپتال؟ نہیں بیٹا, عصر کو جاؤں گی. کیوں؟
دیکھا میں نے آپ نہیں گئی ہیں تو سمجھی میں چھٹی پر ہیں.
نہیں بیٹا, ہمارے کام میں چھٹی کہاں ہوتی ہے.
پھوپھو آپ نے چینج کرا دیا؟ قسم سے مجھے شرم آتی ہے, زحمت نہ کیا کریں.
میری جان یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ تمہارے ساتھ تکلف سے کام لیتی ہے.
بہت شکریہ.
مہتی بیٹا, میں نے خرد مند صاحب کو, یعنی اس وکیل کو جو تمہیں بتایا تھا, فون کر کے ٹائم لے لیا. اس کے پاس چلے جانا, اگرچہ فون پر کسی حد تک اسے معاملہ بتا چکی ہوں.
اس نے کیا کہا؟ کوئی امید دلائی؟
فی الحال تو کچھ نہیں کہا, بس کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس جتنے ڈاکومینٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ لے آ.
کب کے لیے ٹائم لیا آپ نے؟
آج سے پہر کو 4:30 بجے. بس یاد رکھنا کہ جانا ضروری ہے مہدی بیٹا. اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا, بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے تمہارے لیے ایک وقت نکالا ہے.
پھوپھی جان آپ بے فکر رہیے, بھولوں گا نہیں. آپ بھی مجھے اس کا ایڈریس دے دیجیے.
ٹھیک ہے بیٹا, بھیج دوں گی. مہدی بیٹا اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو ذرا تمہارے چچا حمید کے پاس چلتے ہیں.
کس لیے پھوپھی جان؟
میرے ایک دوست نے ایک اچھے کیمپ کا بتایا ہے. وہ لوگ نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں اور گروپ کے شکل میں مشورے اور ایڈوائزنگ کا بھی انتظام. اگر حمید نشہ چھوڑنے کے لیے وہاں جانے پر راضی ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا.
خدا کرے مان جائیں وہ.
خوش قسمتی سے حمید جانتا ہے کہ بیمار ہے. میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے, اس نے کہا ہے یہ اچھی پیش رفت ہے. بس ہمیں اس بات پر ثابت کرنا ہوگا ہم اس کے ساتھ رہیں اور اسے اکیلا نہ چھوڑیں.
قسم سے پھوپھی جان میں ہر دفعہ انہیں یہی بات سمجھاتا ہوں.
میری پھوپھو کے داماد کا انہیں کیمپوں میں 20 سال نشہ کرنے کے باوجود علاج ہوا. آپ دیکھیں گے تو یقین نہیں کریں گے.
ٹائم ہو تو چلتے ہیں.
ٹھیک ہے چلیے.
ٹھیک ہے تو میں جا کے تیار ہو جاتی ہوں.
خدا حافظ.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ایران, کیسے ہو؟
ٹھیک ہوں.
دیکھو میران, پھوپھی نے ایک اپنا وکیل ڈھونڈ لیا ہے, ٹائم بھی لے لیا ہے. آج شام کو وہاں جانا ہے, تم ساتھ آ سکتے ہو؟
ہاں کیوں نہیں آ سکتا, کہاں آئے آپ کو لینے؟
3 بجے تم منیری والے گھر آ جاؤ.
ٹھیک ہے بالکل, 3 بجے میں پہنچ جاؤں گا.
کوئی اور کام ہے؟
نہیں, ملیں گے نا آپ سے.
ٹھیک ہے, خدا حافظ.
خدا حافظ.
لیجیے.
واہ واہ, مٹھائی کھانے کو کتنا دل کر رہا تھا.
نوشے جان, ڈاکٹر صاحب مشورہ سے خوب لے آئی ہیں.
एक अच्छा कैंप मिला है भाई। चलाने वाला मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने का एक दोस्त है। बहुत साफ सुथरी जगह है। क्या ख्याल है आपका?
क्या कहूँ,
मैं खुद कभी कभी तुम्हें देखने आऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जरा अम्मी लोगों और अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करो हमीद भाई।
मैंने उनकी मदद के लिए खुद को छुपाया हुआ था।
तुम्हारे ख्याल में इसे मदद कहते हैं? तुम सोचते हो कि उनकी मदद की है हमीद? मैंने तुम्हारे खातिर इतने सालों बाद पुपी का दिल तोड़ा, इतने साल बाद जाके उनके साथ लड़ी हूँ।
उससे क्या ताल्लुक था?
उनसे ताल्लुक था, उसे तुम्हें रोकना चाहिए था।
नहीं रोक सकती थी, वरना उसने तो अपने तौर पर कोशिश की।
तो क्यों आपको मुनशियात खरीदने के पैसे देती थी वो?
ये किसने कहा है?
सुसन चची ने बताया।
ऐसा नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चों के खर्चे के बहाने उनसे पैसा लेते था। उसने कभी भी मनशियात खरीदने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए।
अगर पुपी इस वक्त हमें बताती कि तुम नशे ही हो गए हो तो हम तुम्हारी मदद करते हैं।
नहीं कर सकती थी, उस जमाने में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था।
और अब हमें अपनी मदद करने दोगे हमीद भाई?
नहीं, अभी नहीं छोड़ सकता बाजी।
क्यों नहीं? खुदा की कसम छोड़ सकते हो। अगर सिर्फ एक रात इस घर में आके देखोगे अब्बू तुम्हारी दूरी की वजह से अजियान कहते हैं तो छोड़ दोगे। सिर्फ एक लहजे के लिए तसव्वुर करो कि कल शायद अब्बू इस दुनिया में ना हो, तुम्हारे देखने की हसरत लेके इस दुनिया से गए हो तो छोड़ दोगे। अगर थोड़ा सा भी अपनी जगह हमारे बारे में सोचोगे तो छोड़ दोगे हमीद।
मुझे थोड़ा और मौका दें।
कितना और कितनी मोहलत चाहिए?
क्या कह सकता हूँ जब तक इसकी जुरत हासिल कर सकूं।
किस चीज की जुरत हासिल करना चाहते हो? इस बात की कि दोबारा इंसान बन सको?
हाँ मेरी बहन, मैं एक ऐसा जानवर हूँ जिसमें इंसान बनने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसा हैवान हूँ जिस जंगल में दूसरे जानवरों के साथ रह रहा था। किसने तुम इंसानों से कहा कि मुझे यहाँ ला के तुम इंसान बनाओ? मैं अपनी हालत बेहतर जानता हूँ, इस वक्त मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आ जाए तो बता दूंगा। अगर मुझे इस हुलिये में देखना नहीं चाहते तो बता दें, मैं किसी और खंडर में चला जाता हूँ। मैं चला जाऊं कहीं और क्या करूंगा?
कहाँ कहाँ जाओगे हमीद? दोबारा उसी जंगल में जाना चाहते हो?
मुझे अपने हाल पे छोड़ दे, खुदा के लिए मुझे अपने हाल पे छोड़ दे।
पुपी जान, चचा से नाराज मत होइए।
जब से हमीद को देखा है रातों को चैन से नहीं सो सकती। मुझे मसूद की शहादत ने भी इतना बेचैन नहीं किया था।
तो क्या उन्हें जबरदस्ती कैंप ले जाएं?
जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। हमेशा के लिए तो उसे कैंप में नहीं रख सकते, बाहर आएगा तो दोबारा शुरू कर देगा।
مہدی فرحمن تم میں سے کون ہے؟
میں ہوں خیر احمد صاحب۔
فرحمن صاحب، اس کیس میں تم سے جتنی غلطی ہو سکتی تھی آپ کر چکے ہیں۔ کم از کم اگر معاملے کو کینسل کرنے کے لیے اسے چیک کے ذریعے رقم دیتے تو اس وقت ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا۔ آپ کیسے उसके अकाउंट में रकम डालने पर राजी हुए।
असल में जब मैं फानी साहब को चेक देने उनके दफ्तर गया, फानी साहब आपने किसी कर्ज खास से फ़ोन पर बात कर रहे थे, बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। जब फ़ोन बंद किया तो बहुत परेशान थे। मुझे उन पर रहम आ गया, मैं इनकार कर सकता था लेकिन सोचा कि अब और परेशान करना ठीक नहीं है।
मुझे यकीन है कि उसने पहले से आपके लिए जाल बिछाया था और जिस दिन उसने कहा कैंट्रेक को गुम कर चुका है उसी दिन से अपने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। उसके मंसूबे का आखिरी मरहला वो जाली फ़ोन था, आपकी हमदर्दी हासिल करना चाहता था ताकि रसीद लिए बगैर रकम उसके अकाउंट में डाल दें। फरमन साहब यकीन करें वो फ़ोन जाली था, उस तरफ कोई कर्ज खा नहीं था।
जी आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, मैं मानता हूँ कि फ़ानी साहब ने पहले से मंसूबा बनाया था लेकिन वो कर्ज खा जाली नहीं था। यानी मैंने उस औरत को इससे पहले देखा था, उसी दिन जब मैं फ़ानी साहब के दफ्तर गया वो खातून वहीं पर मौजूद थी और अपना कर्जा वापस लेने के लिए आई थी। फ़ानी साहब उनकी तसल्ली के लिए उनको मेरे सामने लेके आए और कहा कि अपनी वर्कशॉप कब बेचेंगे ताकि मेरा पैसा दे सके और मैं इस खातून की रकम लौटा सकूं।
तो मतलब उसने उस खातून के सामने कहा कि उसने खुद आपको वर्कशॉप बेचने का कहा है?
जी हाँ।
तो अगर ऐसा हो तो वही खातून आके अदालत में तुम्हारे हक में गवाही दे सकती है।
देखिए मोहतरमा, मैंने इन फरामान साहब से एक जगह खरीदी है, इनको 200 मिलियन तुमान दिए हैं, बाकी पैसों का इंतजाम नहीं हो सका तो मामला फस्क हो गया। अब मैंने इनको फुर्सत दी है कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के मेरी रकम वापस कर दें। मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ फरामान साहब, मेरी रकम कब लौटाएंगे कि मैं इन्हें दे दूँ?
हाँ, उस दिन उन खातून ने सुना कि फानी साहब ने मुझसे ये बात कही कि ये सारी बातें उन्होंने सुनी भी थी।
उनका नाम क्या था?
उसका नाम भूल गया मैं। खैरत मैं साहब, अगर मैं इस खातून को राज़ी करूं कि आके अदालत में गवाही दे दें तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी।
अलबत्ता कानूनी लिहाज से इस बात के साबित होने के लिए दो गवाहों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि उस औरत की गवाही जज की राय पर काफ़ी हद तक असरअंदाज हो सकती है।
जनाब मैं जैसे भी हुआ इस खातून को ढूंढ कर राज़ी कर लूँगा कि वो आकर गवाही दे दें अदालत में।
ये काम ज़रूर करें फरहमन साहब, एक ऐसे गवाह का वजूद जो आपकी बातों की तायीद करे इस केस की नौइयत को बिल्कुल बदल देगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खातून को भी फानी ने बुलाया और उस दिन हमारे सामने ड्रामा कर रही थी?
आखिर वो किस लिए ऐसा ड्रामा रचाएगी?
इसलिए कि तुम ये सोचो कि फानी साहब बहुत परेशान है और आप जल्दी से जाके उसके अकाउंट में रकम
डाल दें। नहीं, क्योंकि मैं उस दिन उन्हें पैसे देने के लिए नहीं गया था, यानी मेरे हाथ में पैसा था भी नहीं। दूसरे ये कि मैंने कहा कि औरत शोर मचा रही थी, मुलाजमीन के सामने फानी की इज्जत से खिलवाड़ कर रही थी। मुझे याद है कि उसने आके फानी से कहा कि मैंने रकम तुम्हें दी है और तुम्हें से लूँगी वापस, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं।
उसका नाम जहन में आया?
नहीं, याद नहीं आया। नहीं,
अब उसका नाम और एड्रेस कहाँ से ढूंढेंगे?
फानी की सेक्रेटरी से जाके पूछना पड़ेगा।
और अगर पूछ लिया कि किस लिए चाहिए तो उसे कहेंगे कि अदालत बुलवा के आपके बॉस के खिलाफ गवाही दिलवानी है?
नहीं, कह देंगे कि हमें उससे एक प्राइवेट काम है, साथी काम है कुछ।
वो नहीं मानेगी, यकीन मानिए उसको शक हो जाएगा।
और कोई रास्ता नहीं है मेहरान, किसी और तरीके से उसे नहीं ढूंढ सकते।
हाँ, लेकिन अगर उसका नाम याद आता तो कुछ कर पाते। मेहदी भाई, लेकिन याद रखना फानी साहब को बिल्कुल इल्म नहीं होना चाहिए कि हम उस खातून को ढूंढ रहे हैं।
उसको भनक लग गई तब तो उसको तलाश करना नामुमकिन हो जाएगा। चलो चलते हैं।
कहाँ?
फानी के ऑफिस में।
मेहदी भाई, हमें एक ऐसे टाइम जाना चाहिए कि फानी ऑफिस में ना हो, वरना वो हमें उस औरत का नाम और एड्रेस नहीं लेने देगा।
जाके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं, जो ही फानी बाहर आएगा हम अंदर चले जाएंगे और वहाँ जाके बात करेंगे।
मेहदी भाई, पता नहीं वो कब बाहर आएगा, बिला वजह टाइम क्यों जाया करे।
हैरान, हमें इतना रुकना चाहिए कि आखिरकार फानी की सेक्रेटरी से अकेले में बात हो जाए। दफ्तर टाइम के खत्म होने के बाद आखिरकार सेक्रेटरी को तो घर जाना होगा। जब काम खत्म होने के बाद ऑफिस से बाहर आएगी तो हम जाके उससे बात करेंगे।
ठीक है, चलें।
जी ओके, अभी उनसे कहती हूँ। प्लीज़ خدا حافظ.
بولو.
معاف کیجیے گا فانی صاحب، میڈم شائستہ نے فون کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ میسم میاں کی کتاب گاڑی میں رہ گئی ہے، رات کو اپنے ساتھ لے آئیے گا.
بخشی کو بھیج دو تاکہ گاڑی سے نکال کے اوپر لے آئے.
جی سر.
لکھا ہے کہ دو چوہے ایک سال میں 500 تک بچے پیدا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ہے نا.
ابھی تک اسٹکرز نہیں لیے.
کس پیسے سے؟ ارے ہاں، اس فرامن کو کیا ہوا؟ اس نے اپنی تجوری کھولی کہ نہیں؟
نہیں، لیکن پیشی کا دن آئے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی.
او ہو، 4 بج گئے، چلو چلتے ہیں ورنہ ادیب پھر بہانے بنائے گا.
میری گاڑی سے چلیں یا تمہاری؟
کوئی فرق نہیں پڑتا.
اگر مجھے پہنچاؤ گے تو تمہاری گاڑی سے چلتے ہیں.
کیوں نہیں پہنچاؤں گا، چلو چلیں.
چلو
تم چلو. خدا حافظ.
خدا حافظ.
مہران.
مہران.
یہ لیجیے، یہ رہی کتاب.
بخشی صاحب اتنے دیر میں کیوں آئے؟ فانی صاحب چلے گئے.
کوئی بات نہیں، ان کو ٹیلی فون کیجیے، اگر ان کو کتاب کی ضرورت ہے تو میں ان کے گھر تک کتاب پہنچا دوں گا.
ان کو فون کرتی ہوں، اگر کہا کہ آپ لے جائیں تو اطلاع کر دوں گی.
ٹھیک ہے، خدا حافظ.
پھر کیا ہوا؟ تم سے پوچھ رہی ہوں.
اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو، ذرا مجھے سانس تو ٹھیک کر لینے دو، اس کے بعد سوال جواب کرنا. تم تو اپنی بہن سے بدتر ہو.
کیا مطلب؟ یہ کوئی خالہ کا گھر ہے تو جب منہ اٹھا کے چلے آ جاتے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اچھی جگہ ملی ہے تمہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے.
یہ بتاؤ، کچھ پیسے ایسا ہوگا جو مجھے قرض دینے کے لیے دو؟ ہماری مالی حالت بہت خراب ہے، تمہاری بہن کو تو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس کی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے، ہم نے اپنا کام چھوڑا کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، ورنہ جا کے مجھ پر لگائے ہوئے الزام کے بابت اس عورت کے خلاف دعویٰ دائر کرتا، اسے عدالت کھینچ لاتا. میں صرف تمہاری خاطر اپنے حق سے گزرا ہوں، سمجھ رہی ہو؟
بہت بڑی غلطی کی، میری پرواہ مت کرو، کمپلین کرنا ہے تو کرو.
السلام علیکم میڈم، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام. چلو اٹھو، بھاگو یہاں سے.
اچھا تم اپنا کام نپٹاؤ، میں فی الحال بیٹھا ہوں.
سلام، ایک منٹ تشریف اوپر لائیے، یہاں پہ ایک انسان ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو پلیز باہر نکالیے.
ارے کیا کر رہی ہو؟ نو، سامنے بری بات ہے.
چوکی دار کے آنے سے پہلے خود اپنے پیروں سے چلے جاؤ، نہ مجھے ستاؤ نہ کسی اور کو، ٹائم ویسٹ مت کرو، جاؤ.
اچھا جاتا ہوں.
معذرت چاہتا ہوں، کیا فانی صاحب تشریف رکھتے ہیں میڈم؟
نہیں، باہر گئے.
واپس کب آئیں گے؟
آپ اپنا کام بتائیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
اصل میں جب میں اس دفعہ آیا تھا فانی صاحب کو ان کے رقم لوٹانے، تو یہاں پر ایک خاتون تھی جن کا نام بھی میں بھول گیا، وہ کیا نام تھا میڈم؟
بزرگ مہر.
جی جی میڈم، بزرگ مہر. اگر ہو سکے تو ان خاتون کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر اگر ہو تو ہمیں دے دیجیے.
معاف کیجیے گا، میں ایسا نہیں کر سکتی.
کیوں
نہیں دے سکتی نا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوگا کہ میں ان کا ایڈریس اور فون نمبر ہر ایرے غیرے کو دے دوں؟
میڈم ہمیں ہر صورت میں ان سے بات کرنی ہے.
ٹھیک ہے، تو کل خود فانی صاحب سے آ کے نمبر لے لیں.
چلیے بھائی باہر چلیے.
نہیں نہیں یہ نہیں، इस साहब को बाहर जाना है, उनको रास्ता दिखाइए।
उठो भाई, उठो, चलो।
देखिए भाई साहब, हम एक दूसरे रिश्तेदार हैं, आप बाहर जाएं, हम सुलह कर लेंगे।
गदीर साहब, ये मेरे बहनों ही हैं, इसके बाद अगर वो ऊपर आएंगे तो मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगी। प्लीज इनको बाहर लेके जाइए, अभी भी इनको रास्ता दिखाइए बाहर का।
चलो भाई, चलो बाहर निकलो, चलो निकलो जल्दी से, टेंशन ना दो, चलो निकलो।
अफसोस के आसमान तरफ थूका अपने ही चेहरे पर गिरता है। ठीक है जाना, मैं खुद बाहर जा रहा हूँ।
फरमान साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकती।
देखिए मोहतरमा, हमारे लिए मैडम बुजुर्ग मेयर से बात करना बहुत ज़रूरी है, यानी हमें उनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये मेहरबानी करेंगे तो हम बड़े मशहूर होंगे आपके।
आपको उनसे क्या मदद चाहिए?
असल में
मैं हमें उनके साथ एक ज़ाती काम है। आप यकीन करें कि हमारा उनको तंग करने का कोई इरादा नहीं है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें।
नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि अखलाकी लिहाज से सही नहीं है कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको दे दूँ।
जी सही, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आप एक काम कीजिए, यहीं से मैडम बुजुर्ग मेहर को एक फ़ोन मिलाइए, उनसे कहिए कि हमें उनसे एक ज़रूरी काम है, अगर वो मान गए तो मैं आपके सामने उनसे बात करता हूँ।
वाह 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 वाह, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम,
खुशामदीद, आइए आइए
आइए आइए।
बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए।
शुक्रिया, जहमत नहीं देना चाहते थे, हम बस जा रहे हैं।
किस गरज से आए थे मेहदी साहब?
असल में फानी साहब, हम आपसे आखिरी दफा ये कहने आए थे कि अब इस खेल को खत्म कर दीजिए।
ये खेल अब संजीदा हो चुका है जनाब।
मैंने अदालत में भी तुमसे कहा था कि जो तुमने मेरे भाई के लिए जाल फैलाया है उसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा।
मैं समझा पैसे लाए और मामला खत्म करना चाहते हो।
हम किसी और तरीके से तुम्हारी रिजायत लेंगे।
ये अपनी तरफ से बोल रहा है या आप भी यही बात कहने के लिए आए थे मेहदी साहब?
फानी साहब, आगे जो भी पेश आएगा आपको ये रकम हरगिज नहीं मिलेगी।
तो फिर आप बाहर तशरीफ ले जाइए और इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या होता है। जाइए, बाहर जाइए।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अगर ये लोग फिर से दोबारा आए तो बुजुर्ग मेयर साहिबा का फोन और एड्रेस नहीं दूना इन लोगों को।
मैडम बुजुर्ग मेयर
जी, आपके तशरीफ लाने से पहले इसरार कर रहे थे कि मुझे मैडम बुजुर्ग मेयर का एड्रेस और फोन नंबर लें।
किस लिए?
नहीं मालूम, कह रहे थे कि एक जाती काम है।
कैसी मदद?
नहीं बताया, सिर्फ कहा कि पर्सनल काम है।
मैं माजरा चाहता हूँ लेकिन किसी वजह से पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये एक बात आपकी जबान से सुने। ये बताइए कि मैंने आपको आज यहाँ किस लिए बुलाया?
इसलिए कि मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपकी रकम कब लौटाऊंगा।
देखिए मोहतरमा, मैंने इन फरामान साहब से एक जगह खरीदी है, इनको 200 मिलियन तुमान दिए हैं, बाकी पैसों का इंतजाम नहीं हो सका तो मामला फंस हो गया। अब मैंने इनको फुर्सत दी है कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के मेरी रकम वापस कर दें। मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ फरामान साहब, मेरी रकम कब लौटाएंगे कि मैं इन्हें दे दूं?
किस्मत बुरी थी, 2 मिनट देर से पहुंचता तो हमारा काम खत्म हो चुका होता।
अगली दफा ऐसे टाइम पे आएंगे कि फानी ऑफिस में ना हो, उसके फाइनेंस मैनेजर नईरी से बात करेंगे, वो सही आदमी है, मेरे ख्याल में वो मदद करेगा, नंबर दे देगा।
भाई साहब रजिस्ट्रेशन नीचे करेंगे?
जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम, इस खातून का एड्रेस चाहिए, मैं आपको उसका घर दिखा सकता हूँ।
मैडम बुजुर्ग मेहर का घर कह रहा हूँ।
जी जी,
कहाँ है?
मुझे उसका मुकम्मल एड्रेस मसन रोड और ब्लॉक नंबर याद नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पहुँचा सकता हूँ।
तो बैठो चले।
बहुत बहुत शुक्रिया।
मैडम जलीली, देखो ये फरामंद भाई या किसी ने भी मैडम बुजुर्ग महर के घर का एड्रेस या टेलीफोन नंबर मांगा तो बिल्कुल मत देना। गौर से सुनो क्या कह रहा हूँ, हो सकता है मैडम बुजुर्ग महर के लिए कोई मसला खड़ा कर दें, बहुत ध्यान रखना।
जी।
चौकीदार से कहो कि इसके बाद इन फरामंद भाइयों को ऊपर नहीं आने दे।
जी जरूर।
और हाँ, चौकीदार से ये भी कहो कि अगर किसी को हमसे काम हो तो पहले आपसे हमांग करे, उसके बाद ऊपर आने दे।
जी अभी ही कह देती हूँ।
शुक्रिया। अभी आया जलाल।
अरे फराज भाई देर हो गई।
तो जलील साहिबा, मजीद ताकीद की तो जरूरत नहीं है ना, मैं इत्मीनान रखूं?
जी आप मुतमईन रहिए।
ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। फनी साहब, मीसम की किताब आप भूल गए हैं।
ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, हालांकि इसी को लेने के लिए वापस आया था। शुक्रिया। और हाँ मैडम जलेली।
जी।
मुझे तुम्हारे लोन की दरख्वास्त याद है, 5 मिलियन थी ना?
जी, लेकिन 3 मिलियन से भी काम चलने की गुंजाइश है।
नहीं कोई बात नहीं, वही 5 मिलियन दे दूंगा। नैयरी से कहता हूँ कि अगले हफ्ते का चेक काट दें।
शुक्रिया फानी साहब।
कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है, बस ये मैडम बुजुर्ग मेहर के बारे में दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े।
नहीं पड़ेगी, आप बेफिक्र हो जाइए।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अरे ना माकूल आदमी, एक किताब लाने में 2 घंटे क्यों लगा दिए?
ऊपर गया तो देखा कि फरमंद आया हुआ था।
तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता था?
शहर का एड्रेस मांग रहा था।
किस लिए?
काम बिगाड़ दिया जलाल, बुरी तरह से काम बिगड़ गया।
क्यों, क्या किया तुमने? अब
एक बार जब शहर दफ्तर आई थी तो उसका मुंह बंद करने के लिए मैं उसको फरामंद के सामने लाया और कहा कि ये साहब अपने वर्कशॉप बेचकर मेरा पैसा देंगे तब मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा।
तो क्या हुआ, कहा है तो कहा हो?
तुम समझ क्यों नहीं रहे हो जलाल, शहर अदालत में आके गवाही दे सकती है कि खुद मैंने फरामंद को वर्कशॉप बेचने की इजाजत दी थी, सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाएगा। इस वक्त तो शहर का एड्रेस इसीलिए ढूंढ रहा था ना।
तो क्या शहर आकर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी?
इसमें कोई शक नहीं, वो तो मेरे खून की प्यासी है, चंद झूठ और भी मिला देगी उसमें।
फरामंद ने एड्रेस तो नहीं लिया?
नहीं। अच्छा हुआ जो मैं वापस आया, वरना जलीली एड्रेस दे देती।
उसे कहा कि दोबारा आए तो एड्रेस मत देना।
हाँ, लेकिन उस जलीली पर मुझे भरोसा नहीं है, अब क्या करें जलाल, उनको शहर मिल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
शहर को एक फोन करो।
मैंने कहा ना कि वो मेरे खून की प्यासी है, उसको किस्से का पता चल गया तो खुद ही फरामंद को ढूंढ निकालेगी और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए पहुंच जाएगी।
अरे किसने मामला बताने को कहा है, फोन करके हाल अहवाल पूछो।
वो किस लिए?
ताकि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए, उसके साथ मामले को बनाए रखो ताकि फरहमन को अगर मिल भी जाए तो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे।
उन 200 मिलियन के मसले पर नजदीक था कि हमारी बात मारपीट तक पहुंच जाती, अब एक फोन करने से हमारे ताल्लुकात कैसे बहाल हो सकते हैं?
फोन से इब्तिदा करो, फिर दोबारा उसका दिल जीतने के लिए जो एकदम जरूरी हुआ कर लेना।
अरे अभी अभी तो उससे जान छोटी है जलाल, दोबारा वबाले जान बन जाएगी, मुझे इसका हौसला नहीं है।
कोई बात नहीं, वबाले जान बनने दो, जब इस दलदल से निकल आओगे तो दोबारा कोई बहाना बनाकर जान छुड़ा लेना उससे।
मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है।
फरहाद अकल से काम लो, ये केस हारे तो पैसा भी नहीं मिलेगा और खुदा ना खास्ता फरहमन ने हितक के इज्जत का दावा दायर किया तो तुम्हारे लिए मजीद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अदालत को धोखा देने, फ्रॉड और दूसरे हजार किस्म के इल्जाम लग जाएंगे। उस लड़की को फोन करके हाल अहवाल पूछो, कहोगे कोई काम है तो मुझे फोन करना, अपनी वफादारी दिखाओ, जाहिर करना कि तुम्हें उसका बड़ा ख्याल है। इस तरह से वो समझेगी कि तुम दोबारा उसके पास जाने वाले हो। उम्मीद दिलाओगे तो फरहमन के साथ जाकर तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगी।
मैडम बुजुर्ग मेहर फानी साहब की बहन है।
फानी साहब की बहन है?
हाँ।
तो उसका फैमिली नेम बुजुर्ग मेहर क्यों है?
क्योंकि तलाक याफ्ता है लेकिन अभी तक शौहर के नाम से यहाँ रह रही है।
नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं, फानी साहब की बहन नहीं। मैं जब उस दिन आया था, ऑफिस गया था फानी साहब के, देखा उस औरत ने आके मेरे सामने बुजुर्ग मेहर को खूब डांटा, उसको खरी खरी सुनाई।
नहीं जनाब, वो अपनी बहन का बहुत ख्याल लगता है। इस दफा जब मैं यहाँ आया था तो फानी साहब की तरफ से उसके बहन के लिए मैं एक चेक भी लाया था। मैंने उनको इसी घर में देखा था, एक दूसरे पर वारिस जा रहे थे।
शायद ये भाई सच कह रहे, झूठ बोला होगा, तुम्हारे सामने ड्रामा कर रहा हूँ।
क्या कह सकता हूँ,
वापस जाना चाहते हैं?
वापस किस लिए?
क्योंकि अगर उसकी बहन हुई तो हमारे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। एक बहन अदालत में अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं देती।
अलबत्ता मैंने ये बात अपनी साली से सुनी है, उसकी भी कोई कल सीधी नहीं है।
तुम्हारी साली क्यों तुमसे झूठ बोलेगी?
नहीं मालूम जनाब, आपने देखा होगा बाज़ लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनको मजा आता है, उसको भी इसी तरह झूठ बोलने की आदत हो गई है। अरे कहीं गुजर ना जाइएगा, ये दूसरी रोड से दाएं मुड़ना है।
ओहो, इस पर तो कोई चैनल नहीं आ रहा। जरूर उसी लड़के का काम होगा।
किस लड़के का?
फतुल्ला के बेटे का। मुझे लगता है कि पिछली दफा भी उसने जानबूझ के काम किया था।
उसने अभी तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ी।
हाँ, आखिरकार वही करना पड़ेगा जो तुमने कहा, उसकी शिकायत करवानी पड़ेगी।
डिश एंटीना की वजह से तू शिकायत नहीं कर सकती, वरना पुलिस कहेगी कि खराब करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
वाकई में उसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल चैनलों पर बहुत फजूलियात दिखाई जा रही हैं।
कौन है, कौन है सहार?
कोई नहीं, छोड़ो।
अगर सूफी साहब हैं तो मेरी बात करवाओ।
नहीं, फरहाद है।
कितना बेशर्म है, उसे कैसे जरूरत हुई तुम्हें दोबारा फोन करने की? ये बताओ कि गाड़ी तुम्हारे नाम करने के बाद फिर कभी तुमको फोन किया है?
नहीं, ये पहली बार है।
फरहाद है। अरे उठाओ, उसे जरूर कोई जरूरी काम होगा।
उठाना मत।
क्यों नहीं उतार रही सहर जान, क्या तुम्हें खुद पर शक है?
छोड़ो फराना, तुम भी ना
इस तरह ये बार बार फोन करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा।
अच्छा तो फोन निकाल दो।
आखिर क्यों, इस तरह तो वो समझेगा कि तुम उससे डर रही हो। फोन उठा के बात करो, देखो क्या कहता है। बकवास की तो गाली दे के फोन बंद कर दो।
क्या काम है?
अस्सलाम वालेकुम।
काम बताओ।
कुछ नहीं, बस तुम्हारा हाल अहवाल पूछने के लिए फोन किया था।
क्या कहता है?
तुम ठीक हो? घर की शिफ्टिंग में कोई मदद चाहिए हो या कोई काम हो तो फोन कर दो, ताकि ऑफिस से बंदे को भेज दूं। हेलो।
हाँ।
ठीक तो हो ना?
और कोई काम नहीं?
मैं ऐसा नहीं होना चाहता था। अगर कोई काम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ मुझसे कहना।
मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि मैं इतना भी बेगैरत और बेवफा नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। मुझे अब भी तुम्हारा ख्याल है।
खुदा हाफिज़।
क्या काम था?
कुछ नहीं, हाल पूछ रहा था।
ये बहुत बेशर्म आदमी है जो इतनी बातों और गलत हरकत के बाद भी तुम्हें फोन करने की जुर्रत करता है। तुम्हें उससे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, उसकी ऐसी धुलाई करती कि सारी उम्र याद रखता।
देखा ना जलाल, मैंने कहा था ना कि वो इतनी आसानी से धोखे में नहीं आएगी।
उसने बुरा भला तो नहीं कहा?
नहीं, लेकिन लिफ्ट भी बिल्कुल नहीं कराई।
अगर गालियां नहीं दी तो इसका मतलब है नरम हो गई है। दो तीन दफा फोन करोगे तो पटा लोगे।
वो बेवकूफ तो नहीं है?
बेवकूफ ना होती तो इब्तदा से ही तुम पे भरोसा ना करती। मजाक कर रहा हूं यार, चलो वरना आदि चला जाएगा।
यही जगह है?
कौन सा घर है?
माफ कीजिएगा, मैं आप पर एहसान नहीं जताना चाहता, लेकिन अगर हमारे इस साली को पता चल गया कि हम आपको यहाँ लाए हैं तो हमारे तो शामत आ जाएगी। वैसे भी उसकी हमसे नहीं लगती, अगर मालूम हुआ कि हम आपको यहाँ लाए हैं तो।
तो किस लिए हमें यहाँ तक लेके आए?
नहीं, बताता हूँ कौन सा घर है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि अपने साली के सामने शर्मिंदा होने के बदले कम से कम थोड़ी सी जेब तो गर्म हो, यानी हमें भी कुछ मिले। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं जनाब, इस काम की कीमत इतनी नहीं है।
हम इससे ज्यादा दे भी नहीं सकते हैं, अगर राजी हो तो ठीक है, वरना खुदा हाफिज।
क्या करें, कोई चारा नहीं।
कौन सा घर है?
हाँ, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं? पहली फ्लोर उस तरफ का घर यानी दूसरी बेल बनती है।
देखो, अगर झूठ बोला हो तो तुम्हारी साली से तुम्हारा एड्रेस लेके घर पहुंच जाऊंगा।
नहीं जनाब, हमारे डिक्शनरी में फ्रॉड का लफ्ज नहीं है। क्या हमारे हड्डियों से कोई लगता है कि हम झूठ बोलने वाले?
नहीं।
बहुत शुक्रिया।
कश ना जाती फरानक।
नहीं यार, अम्मी डांटेंगी। मुझे एक गिलास पानी दोगी?
अभी लाती हूँ।
देखो, इसके बाद अगर इस फरहाद ने फोन किया तो नहीं उठाना। बहुत शुक्रिया।
देखो, मैं तो जफा भी उठाना नहीं चाहती थी। हाँ, तुमने मुझे कहा।
हाँ माफ करो, गलती की। उसने जरूर अपने साथ सोचा होगा कि मैंने तो इस लड़की को डबल हक मेहर दे दिया, अगर उसको ऐसे ही छोड़ा तो बहुत फैल जाएगी। अरे छोड़ो, अपना ख्याल रखना।
खुदा हाफिज। कौन है?
अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, क्या ये मैडम बुजुर्ग मेहर का घर है?
जी फरमाइए।
आप खुद हैं?
नहीं, आप कौन?
मैडम, मैं मेहदी फरहमंद हूँ।
फरहमंद को जानती हो?
नहीं, लेकिन सूरज जानी पहचानी है। फरमाइए।
सलाम अलैकुम मैडम, मैं मेहदी फरहमंद हूँ। चंद दिन पहले हमने फानी साहब के दफ्तर में एक दूसरे को देखा था, पता नहीं आपको याद है? नहीं।
जी जी, मुझे याद आया।
असल में अगर मुमकिन हो तो
मैं चंद मिनट आपको जहमत देना चाहता था, आपका वक्त लेना चाहता हूँ।
एक मसले के बारे में आपसे बात करनी है।
किस बारे में?
फानी साहब के बारे में।
कौन था?